नमस्कार भारत, 20 जनवरी दिन शुक्रवार, मैं हूं संदीप सोनी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आज लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ।
बहुत बड़ी सेलिब्रेशन का मौका है हमारे लिए और पूरी खुशियां मनाने की तैयारी है। नए सूट लिए जा रहे हैं, टाइयां वगैरह और पगड़ियों में स्टार्च लग रही है।
चलेंगे पंजाब और जानेंगे चुनाव से पहले क्या सोच रहे हैं नौजवान।
सबसे बड़ा रीजन है डिप्रेशन, बंदों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, बॉयज को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसके कारण वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं कि वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकल जाके, बट वो निकल नहीं पाते।
बताएंगे आपको जल्लीकट्टू पर क्यों हो रहा है विवाद। खेल की खबर और समाचार पत्रों की सुर्खियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर आज रात शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण की पूर्व संध्या पर वॉशिंगटन में लिंकन मेमोरियल के मैदान में एक रंगारंग कार्यक्रम में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कॉन्सर्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे परिवार के साथ शिरकत की। डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्यक्रम में पहुंचे हजारों लोगों को संबोधित किया।
Like we've never seen anywhere in the world, they say. But we're going to make America great.
लोग कहते हैं कि किसी ने पूरी दुनिया में ऐसा आंदोलन नहीं देखा है। हम सब अमेरिका को सभी के लिए महान बनाएंगे। देश के सभी लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, छोटे दूर दराज के शहरों को भी, हर कोई इसमें शामिल होगा। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। वॉशिंगटन में कैपिटल बिल्डिंग में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शपथ ग्रहण के दौरान कैपिटल हिल में इकट्ठा होने के लिए हजारों लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन 330 कैदियों की सजा कम कर दी है। इनमें से ज्यादातर ड्रग से जुड़े मामलों में कैद की सजा काट रहे थे। व्हाइट हाउस के अधिकारी नील एगल्सटन ने कहा कि बराक ओबामा का मानना है कि इन लोगों को दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। अपने 8 साल के कार्यकाल में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 1,715 कैदियों की सजा कम की है। हाल ही में विकिलीक्स को खुफिया दस्तावेज मुहैया कराने के लिए दोषी पाए गए एक खुफिया मामलों की जानकार की सजा भी बराक ओबामा ने कम कर दी थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मध्य इटली के पर्वतीय इलाके में एक होटल हिमस्खलन की चपेट में आ गया है। राहत और बचाव कर्मियों ने 3 शव निकाल लिए हैं, जबकि 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री पाओलो जेंटिलोनी ने कहा कि देश इस हादसे के बाद सांसें थामे हुए है। एब्रुजो इलाके में रेगोपियान होटल पियानो होटल मलबे में तब्दील हो गया है, जहां भारी बर्फबारी की वजह से राहत का काम भी प्रभावित हो रहा है। राहत कर्मियों का कहना है कि उन्हें मलबे से किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मध्य इटली में बुधवार को रिक्टर पैमाने पर 5 की तीव्रता वाले 4 भूकंप आए थे और भूकंप के झटके रात में भी महसूस होते रहे हैं। अफ्रीकी देश गाम्बिया में नए राष्ट्रपति एडामा बैरो के शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर सेनेगल की सेना गाम्बिया में प्रवेश कर गई है। सेनेगल के सेना प्रवक्ता कर्नल अब्दुनियान आओ ने बीबीसी को बताया कि सेना सीमा पार कर गाम्बिया की राजधानी बांजुल की तरफ बढ़ रही है। एडामा बैरो को सेनेगल की राजधानी डकार में गाम्बिया के दूतावास में शपथ दिलाई गई है। गाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति याहिया जमेह ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। इससे पहले गाम्बिया में एडामा बैरो को याहिया जमेह से सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रीय संगठन की कोशिश का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र में सेनेगल के राजदूत फोदे सेक ने अपने संबोधन में ये कहा। सेनेगल के प्रतिनिधिमंडल ने जो प्रस्ताव दिया है वो इकोवास की नीतियों और कोशिशों की एक कड़ी है। अफ्रीकी संघ और संयुक्त राष्ट्र दोनों ही गाम्बिया के गणतंत्र में चुनाव के बाद की स्थिति का हल निकालना चाहते हैं। सेनेगल में हम कहते हैं कि गाम्बिया पड़ोसी से कुछ ज्यादा है। ये थे फोदे सेक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लातिन अमरीकी देश ब्राजील की एक जेल में पिछले हफ्ते हुई हिंसा में 26 कैदियों की मौत हो गई और उसके बाद ब्राजील के रक्षा मंत्री राउल जंगमैन ने कहा कि सरकार ने यहां 1,000 सैनिकों को भेजा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से, जहां शुक्रवार का दिन इतिहास में दर्ज होने जा रहा है और इसकी वजह है जीत के रथ पर सवार रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप, जो आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। लगभग दो साल पहले तक डोनाल्ड ट्रंप का राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन आज वही ट्रंप अमरीका के राष्ट्रपति बन रहे हैं। वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय की रिपोर्ट।
The President-elect of the United States, Donald John Trump.
ताजपोशी के हर लम्हे की आखिरी डिटेल तक की रिहर्सल। डोनाल्ड ट्रंप की जगह किसी और को खड़ा करके हर पहलू की जांच। कैपिटल हिल के साथ साथ लिंकन मेमोरियल भी सज रहा है रंगारंग शो के लिए, जहां ट्रंप और उनकी नई टीम के सामने पेश की जाएगी बॉलीवुड से हॉलीवुड तक की झलक। देश के कई हिस्सों से स्कूली बैंड पहुंच रहे हैं परेड में भाग लेने, लेकिन लाख पूछने पर भी ट्रंप की राजनीति पर बात करने को इनमें से कोई राजी नहीं।
हम यहाँ पहुंचकर काफी खुश हैं। साल भर से हम इस लम्हे की तैयारी कर रहे थे।
हम तो इसे एक बढ़िया अवसर मानते हैं अपने स्कूल, राज्य और अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने का।
साजिद तरार और जसदीप सिंह ने अपनी बिरादरी के खिलाफ खड़े होकर ट्रंप का साथ दिया था, तो वो कैसे तैयार हो रहे हैं इस इनॉग्रेशन के लिए?
बहुत बड़ी सेलिब्रेशन का मौका है हमारे लिए और पूरी खुशियां मनाने की तैयारी है। नए सूट लिए जा रहे हैं, टाइयां वगैरह और पगड़ियों में स्टार्च लग रही है।
तो मेरे ख्याल में तो हमारे लिए तो ईद जैसा समय है। अब खाने वाने सब चीजें तैयारी हो रही हैं यहाँ पे।
इनॉग्रेशन के अगले दिन ये दोनों नेशनल कैथीड्रल की प्रेयर सर्विस में भी शामिल होंगे, साजिद तरार कुरान की आयत लेकर, जसदीप सिंह गुरु गोविंद सिंह के उपदेशों के साथ। शहर में कई तरह के प्रदर्शनों की तैयारी चल रही है और बगैर हिंसा के प्रदर्शन करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
शुक्रवार सुबह 7 बजे हम वॉशिंगटन में हर उस रास्ते को रोकेंगे जहां से उद्घाटन समारोह तक पहुंचा जा सकता है।
कांग्रेस के कई डेमोक्रेट सदस्यों ने इनॉग्रेशन का बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप एक बटे हुए अमरीका की कमान संभालने से बस कुछ ही घंटे दूर है। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी न्यूज, वॉशिंगटन।
डोनाल्ड ट्रंप की आज होने वाली ताजपोशी पर दुनिया के प्रमुख अखबार क्या लिख रही हैं, आइए सुनते हैं हरिता कांडपाल से।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने शपथ ग्रहण के लिए वॉशिंगटन पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी कैबिनेट का जो सामूहिक इंटेलिजेंस कोशेंट यानी कि IQ है, वो अब तक के सारे अमरीकी कैबिनेट में सबसे ज्यादा है। वहीं अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एशले पार्कर लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में कई बार कहा था कि वो राष्ट्रपति बनते ही पहले दिन ओबामा केयर वापस लेंगे, मेक्सिको की सीमा से दीवार बनाने पर भी काम शुरू होगा। ऐसी कई चीजें उन्होंने कही थी, इसलिए उनके शुरुआती दिन राष्ट्रपति बराक ओबामा के फैसलों को उलटने में लग सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड अखबार के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड ने कहा है कि शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपने तेवर शांत करने का मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप को चीन और ताइवान पर आक्रामक और खतरनाक बयानबाजी कम करनी चाहिए। वहीं चीन के अखबार चाइना डेली ने एक कार्टून प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है ट्रंप की चीन नीति, और ट्रंप के हाथ में ग्रेनेड बम दिखाया गया है और इसमें एक अमरीकी डॉलर का प्राइस टैग भी है। इसके अलावा द गार्डियन अखबार ने द पियानो गाइज बैंड का एक वीडियो अपनी वेबसाइट पर शेयर किया है। इट्स गोना बी ओके। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमरीका जैसे बट सा गया है और उनके खिलाफ भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया है।
और इधर भारत में, जैसा कि आप जानते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब इन 5 राज्यों में शुमार हैं। पंजाब की बात करेंगे कुछ देर के बाद, लेकिन पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच गठबंधन की बातचीत सीटों को लेकर खटाई में पड़ गई है। उत्तर प्रदेश के मौजूदा सियासी समीकरणों पर इसका क्या असर होगा, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान से बात की।
वैसे तो देखें तो RLD बड़ी छोटी सी पार्टी है, उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो सीमित है। मैक्सिमम उनके रिकॉर्ड में शायद 15 या 16 सीटें कभी आई हैं, वरना 8-9 इस तरीके से रहता है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। तो वैसे देखने में नहीं लगता कि बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट माहौल है जिसमें कि महागठबंधन का मेन क्लैश होगा बीजेपी से और बिल्कुल कांटे की लड़ाई होगी, इसलिए एक एक सीट का फर्क से फर्क पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो अभी जो सूरत हाल है उसमें समाजवादी पार्टी के लिए भी ये प्रॉब्लम है कि वो 30 सीटें जो अजीत सिंह चाहते हैं वो 30 अगर उनको दे देंगे और कांग्रेस चाहती है 100 सीटें, तो फिर इनके यहाँ अंदरूनी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तमाम इनके कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि भाई से ही ऑलरेडी इतने कम हो गए तो 300 सीट पे अगर लटक जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए तो इनके लिए प्रॉब्लम होगी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कांग्रेस आरएलडी को कॉम्पेंसेट कर सकती है, क्योंकि इस गठबंधन में जो मुस्लिम वोट का रिकंसोलिडेशन होगा इस महागठबंधन के फेवर में, उसमें कांग्रेस का भी योगदान रहेगा और कांग्रेस की तरफ अभी भी एक तबका है मुसलमानों का जो इंक्लाइंड रहता है, तो इस वजह से मुमकिन है वो शायद कॉम्पेंसेट कर ले।
आरएलडी के पास इसके बाद क्या रास्ता बचेगा?
क्योंकि अजीत सिंह की रेपुटेशन इस तरीके की है, वो बीजेपी के साथ भी जा चुके हैं, वो मायावती के साथ भी जा चुके हैं, कोई पार्टी नहीं है जिसके साथ वो ना गए। हालांकि उन्होंने इतनी बड़ी डिमांड नहीं करी थी, 30 लड़ेंगे तो सोचेंगे कि भाई 12-14 जीत जाएंगे, लेकिन अब आरएलडी के पास कोई रास्ता इंडिपेंडेंटली लड़े, क्योंकि वो तो सीमित है उतने ही एरिया में, तो इंडिपेंडेंटली ही लड़ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी मायावती से कुछ डील हो जाए, मायावती लेकिन प्री इलेक्शन डील करती नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग जरूर हो सकती है उनकी मायावती के साथ, और ये भी पॉसिबल है वो वापस बीजेपी से हाथ मिला ले। अजीत सिंह का कहना बड़ा मुश्किल।
अगर मोरल तरीके से देखा जाए, मतलब नैतिक रूप से समाजवादी पार्टी जो एक बड़े गठबंधन के लिए काम कर रही थी और अखिलेश बड़े मजबूती के साथ उभरे हैं लीडर अपनी पार्टी के भीतर भी और प्रदेश में भी, तो क्या उस जो नैतिक बल पर है उस कोई इसका असर देखते हैं आप?
मैंने कहा ना कि डेंट तो पड़ेगा, लेकिन उतना बड़ा डेंट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये बिहार जैसी सिचुएशन नहीं है। यूपी में, बिहार में नीतीश और लालू दोनों बड़े प्लेयर्स थे, बराबर के प्लेयर्स थे। यूपी में बड़ा प्लेयर सिर्फ समाजवादी पार्टी है, न कांग्रेस है न आरएलडी है, आरएलडी तो बहुत ही छोटी है, तो इसलिए उतना इम्पैक्ट जितना समझा जा रहा है मुझे नहीं लगता है उसका इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है महागठबंधन पे।
ये थे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक शरद प्रधान। और अब वो एक बात जो मुझे लगता है कि बीबीसी के सुधी पाठक और जो सजग श्रोता हैं उनके जहन में ज़रूर आई होगी, और वो बात ये कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कोई नाम अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ाया है। क्या है इसके पीछे रणनीति और क्या है भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी, सुनिए नितिन श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में।
जुलाई 2016 की एक दोपहर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी के बस्ती जिले में बूथ प्रभारियों की एक बैठक ले रहे थे। एकाएक कुछ कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर योगी आदित्यनाथ के नारे लगाने शुरू कर दिए। हमारा सीएम कैसा हो, आदित्यनाथ जैसा हो, के नारों से नाराज मंच पर मौजूद अमित शाह ने गुस्से में कहा, भाषण जारी रखूं या बंद कर दूं। बाद में इसी भाषण में अमित शाह ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी और सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम उत्तर प्रदेश में ऊर्जा प्रदान करता है। मजे की बात यह है कि मंच पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी बैठे थे, जो मुस्कुराने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। जहां ये सम्मेलन जारी था उससे 1.5 घंटे की दूरी पर सुल्तानपुर है, जहां के भाजपा सांसद वरुण गांधी हैं। बस्ती की बैठक के महीने भर पहले इलाहाबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान शहर के कई हिस्सों में वरुण गांधी यानी भावी सीएम के पोस्टर रातों रात देखे गए थे। सुल्तानपुर से ही सटा हुआ अमेठी है, जहां पिछले लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी से हारने के बावजूद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के तूफानी दौरे जारी रहते हैं। एक ऐसे ही दौरे से लौटते समय हवाई जहाज में मैंने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री पद के बारे में क्या ख्याल है। मुस्कुराती हुई स्मृति का जवाब मिला, दफ्तर आओ बात करते हैं, लेकिन सवाल मंत्रालय से जुड़े ही रखना। पिछले साल इन चारों नेताओं का नाम कभी न कभी मुख्यमंत्री पद के लिए उछला है या उछलवाया गया है, लेकिन पार्टी नेतृत्व तो अभी तक किसी के लिए पसीजता नहीं दिखा। वरिष्ठ पत्रकार राजीव वाजपेयी को लगता है कि दाल किसी की नहीं गलने वाली।
बीजेपी के पास इतनी हिम्मत नहीं है फिलहाल, जो वस्तुस्थिति है यहाँ के जातीय समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, उसमें उनको लगता है कि मोदी का नाम ही सबसे ऊपर है और वही हमें वोट दिलाएगा।
हाल ही में एक पत्रकार ने अमित शाह से पूछा था, क्या भाजपा राजनाथ सिंह या योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के इस पद के लिए प्रोजेक्ट करेगी। अमित शाह का जवाब पुराना सा था, भाजपा के लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र आज भी जिंदा है, लेकिन यूपी चुनाव के निकट आते आते भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपने चहेते लीडरों का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस बीच चार साल प्रदेश अध्यक्ष रह चुके लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस बात से इनकार करते नहीं थकते कि यूपी में भाजपा के ऊपर एक बड़े स्थानीय चेहरे का संकट है।
जिनके पास नेतृत्व है वो क्या क्राइसिस में नहीं है? जो अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए ना बनाए आप बनाए, उनके पास भी एक चेहरा मायावती कांग्रेस के मित्र लेकर आए थे शीला दीक्षित जी को। हमारे पास 1000 से ऊपर कार्यकर्ता है, जिसको भी राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा मुख्यमंत्री का काम करो, मुख्यमंत्री का काम करने लगेगा।
हालांकि लखनऊ स्थित वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट को लगता है कि भाजपा अपने हाल के इतिहास को दोहराने की मंशा से ही ऐसा कर रही है।
बीजेपी के लोग यहाँ ये भी तर्क देते हैं कि हरियाणा में हमारा कोई चेहरा नहीं था, झारखंड में हमारा कोई चेहरा नहीं था, महाराष्ट्र में हमारा कोई चेहरा नहीं था, फिर भी हम तीनों जगह हम चुनाव जीते। बीजेपी में इस समय इस बात को लेकर के अंदर झगड़ा नहीं कि चेहरा कौन बनेगा, इस बात को लेकर झगड़ा है कि पहले आप अपने को टिकट दे रहा हो।
पार्टी के अंदर के लोग बताते हैं कि भाजपा ने एक साल पहले से ही टिकट वितरण के साथ इस बात पर गौर किया था कि क्या किसी को बतौर सीएम आगे लाया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक 7 तरह के आंतरिक सर्वे करवाए गए, जिनमें से 3 की रिपोर्ट सीधे अमित शाह के पास भेजी गई, लेकिन ऐसा कोई मंजर नहीं बनकर सामने आया जिसमें ये साफ कहा जा सके कि कोई एक नेता है जिसके लिए पूरे प्रदेश में वोट मिल सकते हैं। इधर टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी पहली सूची के बाद ही आ चुकी थी, जिसके चलते आगे की लिस्टों में देर भी हो रही है। मामले पर राजीव वाजपेयी की राय एकदम बेबाक है।
गुटबाजी जो है ये नासूर रही है अभी तक बीजेपी के लिए, और ये मोदी की लहर जब चली लोकसभा चुनाव में तो उस गुटबाजी से आदमी हटा थोड़ा। दूसरा, अमित शाह की जो संगठनात्मक रचना थी उससे भी गुटबाजी अलग हुई, उन्होंने एकदम नई लीडरशिप खड़ी की। अब ऐसा नहीं है कि वो लीडरशिप ऐसी खड़ी हो गई होगी चीफ मिनिस्टर, मतलब यहाँ कोई ऐसा फेस नहीं है उनके पास कि वो चीफ मिनिस्टर के रूप में हो जाए, प्रोजेक्ट करे, तो दिक्कत है।
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, पार्टी में इस बात को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं कि कुछ क्षेत्रीय नेता और सीएम के दावेदारों के समर्थक कहीं खेल न बिगाड़ने में लग जाएं। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
लहलहाते खेत, दूध दही लस्सी, ढोल नगाड़ा भांगड़े के लिए मशहूर और ड्रग्स की वजह से बदनाम हुए पंजाब में चुनाव की हवा में कौन से मुद्दे तैर रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए हम चलेंगे पंजाब। लेकिन पहले दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियों के साथ हरिता कांडपाल स्टूडियो में मौजूद है।
जी संदीप, सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर की बात करते हैं। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चर्च का जो पर्सनल नियम है, कानून है, वो नहीं चलते हैं तलाक के मामलों में। यानी कि जो ईसाई दंपति हैं, अगर वो चर्च के नियमों के मुताबिक तलाक लेते हैं तो वो वैध नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो संवैधानिक कानून है वो ही ईसाई दंपतियों पर लागू होंगे। दरअसल ये जो याचिका थी वो उसमें कहा गया था कि मुस्लिमों के 3 तलाक की तर्ज पर चर्च संबंधी कानून को भी तलाक के मामले में जो है कानूनी मान्यता दी जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है। एक और खबर है जो हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिनेमा हॉल या सार्वजनिक समारोह के दौरान राष्ट्रगान गाए जाने के समय विकलांग लोगों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दिए। कहा गया है कि विकलांग लोगों को भी जो है उस समय हिलना नहीं है, और वो जितना हो सके उन्हें शारीरिक रूप से सावधान रहना है, जो कि पिछले दिनों इस पर काफी विवाद हुआ था। तो अब स्पष्ट दिशा निर्देश केंद्रीय
दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर सिनेमा घरों में मारपीट की घटनाएं भी सामने आई थी
जी, और विकलांगों के साथ कुछ मारपीट हुई थी। इसके अलावा नई दुनिया ने एक खबर छापी है, नोटबंदी के बाद काले धन पर नकेल के लिए सरकार का एक नया फरमान आ गया है। 10 लाख रुपए जमा अगर करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से 1 लाख पेमेंट करने वालों से पूछताछ होगी। और इसके अलावा एक तस्वीर जो सभी अखबारों के पहले पन्नों पर मैं देख रही हूँ, इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापी है, कल एक दुर्घटना में 12 बच्चों की, स्कूली बच्चों की मौत।
उत्तर प्रदेश वाली खबर होगी
बिल्कुल। एक पन्ना है किताब का जिसमें छोटे से बच्चों की जो नर्सरी राइम्स होती है, कविता होती है, उसकी 4 पंक्तियां हैं और आसपास में बिखरे हुए जूते हैं। ये घटना जिसमें स्कूल और ट्रक भिड़े थे, उसमें 12 बच्चों की जान चली गई थी, और ये उत्तर प्रदेश के एटा जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर की दुर्घटना है, जिसकी कल दिन भर चर्चा रही। इसके अलावा एक और खबर जो सभी हिंदी अखबारों में मैं देख रही हूँ, अमर उजाला की पहली हेडलाइन है, सेकंड लेफ्टिनेंट का कोर्ट मार्शल निरस्त हो चुका है और सेना प्रमुख और केंद्र पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का यह फैसला है। याची की नौकरी बहाल करने को कहा गया है, प्रमोशन भी दिया जाए और जुर्माने में से 4 करोड़ मुआवजा जो है इनको दिया जाएगा, जो कि सेकेंड लेफ्टिनेंट हैं और इनको जो है कोर्ट मार्शल कर दिया गया था, गलत तरीके से ये साबित किया गया है। इसके अलावा जो कल का भारत इंग्लैंड का मैच है उसकी चर्चा हर अखबार में, हर अखबार ने
युवराज सिंह ने बड़े शानदार तरीके से वापसी की है जिसमें
जी जी धोनी
ने भी शतक जड़ा है,
दोनों ने शतक जड़ा है। अखबार लिखता है, नई दुनिया अखबार लिखता है कि रोमांचक मैच में भारत ने इंग्लैंड को 15 रनों से हरा दिया है और यूवी का 6 साल बाद तो माही का कप्तानी छोड़ने के बाद ये पहला शतक है और 35 साल के ऊपर के 2 खिलाड़ियों ने एक साथ भारत की टीम में शतक जड़ा है, ये बहुत सालों बाद पहली बार हुआ है।
बहुत शुक्रिया समाचार पत्रों की सुर्खियाँ बताने के लिए।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं संदीप सोनी के साथ। और आइए अब महसूस कीजिए उन नौजवानों की धड़कन जो चुनावी मौसम में नई आशा नई उम्मीद के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने बुन रही है।
मैं इस वक्त यहाँ पर साहिर लुधियानवी के कॉलेज में हूँ। आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। जी हाँ बिल्कुल, मैं पंजाब के लुधियाना में हूँ और ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है यहाँ का, जहाँ पर बहुत सारे छात्राएं मेरे साथ खड़ी हैं जो पंजाब में अपना फ्यूचर किस तरह से, जो यंगर जनरेशन है वो किस तरह से देखती हैं। सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि दूसरी जगहों पर जो छात्र हैं देश के या जितने भी बड़े एजुकेशन हब्स हैं उनकी तुलना में पंजाब के स्टूडेंट्स अपने आप को कहाँ पाते हैं?
सर मेरा नाम नवदीप कौर है। पंजाब के छात्र कहाँ पाते हैं? तो बहुत ही नीचे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम है, ना के बराबर ही है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है और गर्ल्स को बहुत ही कम चांस मिलता है। पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, उन्हें कॉलेज नहीं जाने देते।
अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि वो चाहते हैं कि हाँ पंजाब के स्टूडेंट्स भी थोड़ा ऊपर उठें, उनको भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले। एमए कर रहे हैं, एमए के बाद मेरे को कुछ नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगी आगे।
लेकिन लुधियाना जाना जाता है इंडस्ट्री के लिए, तो क्या प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है?
प्राइवेट सेक्टर में जेकर असि कहने हैं कि अपॉर्चुनिटीज तो है, पर असि हरेक दी यही इच्छा कि वो सरकारी सेक्टर च जावे।
आपका नाम क्या हुआ?
पवनप्रीत कौर।
प्राइवेट में क्यों नहीं जाना चाहते?
क्योंकि सर सरकारी च बहुत ज्यादा सहूलता होंदिया ने, जेकर अपन सरकारी जॉब मिलती है, पहली गल तो यह हरेक पेरेंट्स चाहता कि उन्हां दी बच्ची सरकारी जॉब होवे ताकि उन्हें अगे भी वधिया घर मिले। हमारे स्कूल में प्रॉब्लम है, सरकार को चाहिए कि जैसे प्राइवेट स्कूल में स्टडीज होती है इंग्लिश को लेकर, सर पंजाबी पर हिंदी पर जोर दिया जाता है, इंग्लिश पे क्यों नहीं जोर दिया जाए? क्योंकि आगे तो इंग्लिश भी काम आनी है।
पंजाब की महिलाएं बाहर अच्छा कर रही हैं, पंजाब में घरों में बंद क्यों हैं?
माईसेल्फ रमनदीप, ये कोई बात नहीं है कि हम घरों में बंद, हमें सब यहाँ पर फ्रीडम मिलती है, सभी कुछ मिलता है, हमारे पेरेंट्स भी अलाउ करते हैं, पर कई गांव ऐसे हैं यहाँ पर लड़कियों का अंदर रखा जाता है, बट बहुत ज्यादा कम हो गया। अभी लड़कियां बाहर जाने लगी है, काम करने लगी है, एज प्रोफेसर लगी है कॉलेज यूनिवर्सिटी पर, बट है थोड़ी सी रेशो प्रॉब्लम है, वो है नैरो माइंडेड।
पंजाब को हरित क्रांति की बेल्ट है, किसानों की बेल्ट है, गेहूं गन्ना, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है ड्रग्स की। चूल्हे सूने हो गए कई घरों में और ये इतना बड़ा एक नेटवर्क है ड्रग्स का जिसकी वजह से पूरा पंजाब परेशान है। यहाँ का नौजवान किस तरह से देख रहा है इसको?
आई एम परमजीत कौर। ड्रग्स बंदा क्यों लेता है? डिप्रेशन सबसे बड़ा रीजन है, डिप्रेशन। बंदों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, बॉयज को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसके कारण वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं कि वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकल जाए, बट वो निकल नहीं पाते।
चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस बार जब चुनाव में टिकट देने की बारी आई तो बहुत कम मिला महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन। छात्राएं क्या सोचती हैं इस बारे में?
मैं ईशा। पॉलिटिकल पार्टीज का देखो, अगर आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर कोई भी आपकी मदर कोई भी खड़ा हो रहा है तो वो बाद में कोई काम नहीं करता, उनके हस्बैंड या कोई उनका फादर यही काम करते हैं, लाइक आपके उनके सिर्फ साइन चलते हैं।
तो सुना आपने यहाँ पर जो एस्पिरेशंस हैं पंजाब की यूथ के, खासतौर से लड़कियों के, वो किस तरह के हैं? सलमान रावी, बीबीसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लुधियाना।
आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीबीसी हिंदी की खास पेशकश इसी तरह आगे भी जारी रहेगी। और पिछले कुछ दिनों से जल्लीकट्टू पर बड़ी चर्चा हो रही है, विवाद हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आइए कुछ सवाल और उनके जवाब की शक्ल में इसे समझने की कोशिश करते हैं।
आखिर जल्लीकट्टू है क्या और उस पर लगी पाबंदी से तमिल समुदाय इतना नाराज क्यों है?
जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर खेला जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। तमिलनाडु से सुप्रीम कोर्ट के वकील वी सालियन के अनुसार ये 5000 साल पुराना खेल है। इस तरह का खेल स्पेन में भी होता है जिसे बुल फाइट कहते हैं। जानवरों की सुरक्षा वाली संस्था पेटा के अनुसार जल्लीकट्टू खेल के दौरान बैलों के साथ क्रूरता की घटनाएं होती हैं। इल्जाम ये भी है कि बैलों को नशीले पदार्थ खिलाए जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी इन आरोपों को गलत बताते हैं।
जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध कब लगा?
जानवरों की सुरक्षा करने वाली संस्था पेटा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गई। अदालत ने 2014 में इस खेल पर पाबंदी लगाने का फैसला सुनाया।
तो फिर ये प्रदर्शन अब क्यों हो रहे हैं?
प्रदर्शनकारी बल्ली कुमार ने कहा कि हमने 2 साल इंतजार किया है कि पाबंदी उठाने की हमारी मांग पूरी की जाएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो हम अब सड़कों पर आने पर मजबूर हुए। कुमार के अनुसार अब वो अपना आंदोलन उसी समय समाप्त करेंगे जब उनकी मांग पूरी होगी।
ये विरोध प्रदर्शन सहज है या इसकी पहले से तैयारी चल रही थी?
दिल्ली के प्रदर्शन में मौजूद लोगों के अनुसार ये प्रदर्शन खुद से शुरू हुआ, इसे किसी पार्टी या नेता ने नहीं शुरू किया। चेन्नई के मरीना बीच में हजारों की संख्या में विद्यार्थियों, तकनीकी कामगारों, अभिनेताओं और अनन्य अहम लोगों ने पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन जारी रखा हुआ है।
प्रदर्शनकारी आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं?
दिल्ली में तमिलनाडु हाउस के बाहर और जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी उत्तेजित नजर आ रहे थे। वो बार बार पेटा और दिगर एनजीओ के खिलाफ नारे लगा रहे थे। कुछ लोगों के इस सुझाव पर कि ये प्रदर्शन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिकों बनाम शहरों में बसने वाले लोगों के बीच सांस्कृतिक मतभेद का नतीजा है, जहां प्रदर्शन में भाग लेने वालों ने कहा कि ये तर्क सही नहीं है। कहा जाता है कि उच्च जाति के लोग जल्लीकट्टू पर लगी पाबंदी का समर्थन करते हैं। प्रदर्शनकारी कहते हैं कि उन्हें विभाजित करने की मीडिया की एक चाल है। कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि ये प्रदर्शन उत्तर भारत के कथित प्रभुत्व के खिलाफ एक भावुक आवाज है, लेकिन इस तर्क को भी प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने खारिज कर दिया।
ये थे इंदु पांडे और निखिल रंजन, और अब खेल समाचार राखी शर्मा से।
कटक वनडे में कल 15 रन की जीत के साथ भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज अपने नाम कर ली। युवराज के शानदार 150 और एमएस धोनी के 134 रन की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 382 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में मेहमान टीम ने 8 विकेट खोकर 366 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए उसके बल्लेबाजों ने कुछ अच्छी साझेदारियां निभाई, जिसमें जो रूट और जेसन रॉय के बीच दूसरे विकेट के लिए 100 और मोइन अली और इयन मॉर्गन के बीच 6 विकेट के लिए 93 रनों की पार्टनरशिप अहम रही। हालांकि ये इंग्लिश टीम की जीत को सुनिश्चित करने में नाकाफी रही। इंग्लैंड के लिए इयन मॉर्गन ने सबसे ज्यादा 102 रन बनाए। इंग्लिश पारी के 3 विकेट आर अश्विन ने झटके। इससे पहले भारतीय पारी ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 381 रन बनाए। भारत की शुरुआत खराब रही, उसके 3 विकेट महज 25 रन पर गिर गए, लेकिन इसके बाद चौथे विकेट के लिए युवराज सिंह और पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के बीच 256 रन की रिकॉर्ड साझेदारी हुई। 3 वनडे मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इस जीत के मायने भारतीय टीम के लिए क्या है, इस पर बात कर रहे हैं क्रिकेट विशेषज्ञ अयाज मेमन।
बहुत बड़े मायने, एक तो ये है कि आप तैयारी कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो बड़ा टूर्नामेंट है और आपको एक मोमेंटम चाहिए, जीत का मोमेंटम। और उसके अलावा जो इस सीरीज में हमने देखा है कि जैसे युवराज सिंह एक दिग्गज खिलाड़ी तो थे ही, लेकिन ऐसा लगा था कि शायद उनका करियर पूरा हो गया है, वो वापसी की और बहुत शानदार वापसी उनकी हुई है। कुछ प्लेयर्स अच्छे जो प्लेयर्स थे वो इंजर्ड थे, जैसे रोहित शर्मा, लेकिन उनकी कमी नहीं महसूस हुई क्योंकि कुछ अलग खिलाड़ी जो दूसरे खिलाड़ी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ही अहम रखा, जैसे केदार जाधव।
सीरीज का आखिरी वनडे 22 जनवरी को कोलकाता में खेला जाएगा।
इसके साथ ही भारत में बजने वाले हैं सुबह के 7, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर आज शपथ लेंगे। वॉशिंगटन में कैपिटल बिल्डिंग में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन 330 कैदियों की सजा कम कर दी है। इनमें ज्यादातर ड्रग्स से जुड़े मामलों के में कैद की सजा काट रहे थे। मध्य इटली में पर्वतीय इलाके में हिमस्खलन, राहत और बचाव कर्मियों ने 3 शव निकाले जबकि 30 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अफ्रीकी देश गाम्बिया के नए राष्ट्रपति एडम बेरो के शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर सेनेगल की सेना गाम्बिया में प्रवेश कर चुकी है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com है आपके साथ। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को इजाजत दें। नमस्कार।